ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने यह बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही।
9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। आतंक के आंकड़ों को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है।
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार भारत इस संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा कि उभरते सैन्य हालात पर भारत और अमरीका के नेताओं के बीच कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु युद्ध की अटकलों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से पारंपरिक क्षेत्र में थी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने स्वयं परमाणु हमले की बात को खारिज किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का दृढ़ रुख है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और न ही इसका हवाला देकर सीमा पार आतंकवाद को संचालित होने देगा। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप गतिविधियां न करने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर के सीमावर्ती निवासियों के लिए 600 नए बंकरों के निर्माण की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती निवासियों की सुरक्षा के लिए 2000 व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकर पहले ही बनाए जा चुके हैं। उन्होंने सीमावर्ती गांवों में अग्रिम सायरन प्रणाली स्थापित करने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर बल दिए जाने के बाद भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में 9% तक की तेजी आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब मेड इन इंडिया सैन्य उपकरणों का समय आ गया है। उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया। भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, केनिस टेक्नोलॉजी, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, अवंतेल, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रा माइक्रो, डेटा पैटर्न और कई अन्य कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। उधर चीन की रक्षा कंपनियों के शेयरों में आज 9% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि रणनीतिक सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इससे भारत एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा के नाम का यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। यह अभियान 23 मई तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के सम्मान में आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके कैबिनेट सहयोगी और दिल्ली के संसद सदस्य शामिल हुए। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देशवासियों के लिए गर्व की बात है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई कल भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति बी आर गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 गांवों के लोगों ने कल रात एथेनॉल से बनी शराब पी ली थी। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच 2 आबकारी अधिकारियों, 1 पुलिस उपाधीक्षक और 1 थाना प्रमुख को निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2024 में तपेदिक के रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार में हुई प्रगति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने देश से तपेदिक को जड़ से समाप्त करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न 100 दिन तक चलाए गए तपेदिक मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। इस अभियान में उन चिन्हित जिलों को शामिल किया गया था जिसमें 12,97,00,000 संभावित रोगियों की जांच की गई। इनमें से 7,19,000 तपेदिक के मामलों का पता चला। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों और उनके व्यवसायों के आधार पर तपेदिक के रोगियों का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसमें पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फॉरेंसिक सेवाओं से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की प्रगति और वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। श्री शाह ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्र शासित प्रदेश की सराहना की और उनके जल्द से जल्द कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाए जाने का काम तेजी से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे उन्नत 3 नैनोमीटर वाले चिप्स डिजाइन करने की क्षमता रखता है। 78वां कान फिल्म महोत्सव आज रात फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो रहा है। 12 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर के फिल्म निर्माता, अभिनेता और सिनेमा प्रेमी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए साथ आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 17 मई से फिर से शुरू होगा। भारत की ऑपरेशन सिंदूर के कारण इसे 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। 17 मई को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।